Iran Radio Podcast.
सन 1722 में अफगानों के हाथों इस्फहान का पतन हो गया, लेकिन सफवी युवराज तैमास्ब शहर से निकलने में सफल हो गया था। दोस्तों, दुनिया के इतिहास पर पॉडकास्ट का ये 34वां एपिसोड है। ईरान रेडियो से मैं अहमद अब्बास हूँ, आप सभी को मेरा सलाम। हम बात कर रहे थे सन 1722 में घटने वाली घटना की के सफवी युवराज तहमास्ब शहर से निकलने में सफल हो गए। इस्फहान का पतन हो चुका था, अफगानों का उस पर कब्जा हो चुका था। तहमास्ब इस्फहान की घेराबंदी को तोड़ने के लिए एक मजबूत फौज का गठन करना चाहते थे, लेकिन इससे पहले ही उन्हें खबर मिली कि इस्फहान का पतन हो चुका है। इस्फहान के पतन के बाद तहमास्ब ने कज़वीन में शाह तहमास्ब द्वितीय होने का ऐलान कर दिया और अफगानों को बाहर निकालने के लिए रूस से मदद मांगी। पीटर महान ईरान की मदद के लिए तैयार था, लेकिन उसके बदले में वो ईरान के कई उत्तरी शहर और प्रांतों पर नियंत्रण चाहता था। तहमास्ब जब रूसियों से निराश हो गया तो उसने तुर्कों से मदद की गुहार लगाई। उस्मानी शासन ने भी मदद के बदले ईरान के पश्चिमी इलाकों की मांग कर दी। एक साल बाद जब रूसी और उस्मानी अपनी मांगों को लेकर नाउम्मीद हो गए तो उन्होंने फ्रांस की मध्यस्थता से एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत उस्मानी साम्राज्य को उत्तरी ईरान पर रूसियों के कब्जे को मान्यता देनी थी और रूसियों को पश्चिमी ईरान पर तुर्कों के कब्जे को स्वीकार करना था। इस तरह ईरान के अक्सर हिस्सों पर उस्मानी साम्राज्य रूसियों और अफगानों का कब्जा हो गया था। तहमास्ब द्वितीय ने मज़ंदरान में शरण ले रखी थी और वो भविष्य को लेकर पूरी तरह से निराश हो चुका था। उसके दो साल बाद अफशार कबीले का सरदार नादिर कुली बेग 5,000 लड़ाकों के साथ परेशान शाह की मदद के लिए पहुंच गया। काजार कबीले का सरदार फतेह अली खान भी 3,000 सैनिकों के साथ उनसे जाकर मिल गया। 8,000 लड़ाकों और नादिर कुली बेग जैसे शक्तिशाली सरदार को देखकर निराश तहमास्ब के दिल में आशा की किरण जग उठी। इन 8,000 लड़ाकों की जांबाजी ने ईरान में एक नया इतिहास लिख दिया और देश से कब्जाधारियों का बाहर निकालने का सिलसिला शुरू हो गया। तहमास्ब ने कठिनाइयों को सहन करने की क्षमता नहीं देखी थी और अपने अंदर नहीं पैदा की थी। सबसे ख़राब स्थिति में, यानी जब देश के बड़े हिस्से पर अफगानों, रूसियों और उस्मानियों का कब्जा था, तब भी वो मौज मस्ती करने और जीवन का आनंद लेने में डूबा रहता था। दूसरी ओर अफशार और काजार कबीलों के योद्धाओं ने नादिर कुली बेग के नेतृत्व में लगातार 3 युद्धों में अफगानों को शिकस्त देने में सफलता हासिल की। इस्फहान पर कब्जे के 8 साल बाद इन योद्धाओं ने उसे अफगानों से आज़ाद करा लिया और एक बार फिर तहमास्ब ने अपने पूर्वजों के महल में कदम रखा। जब तहमास्ब ने महल के बरामदे में कदम रखा तो एक बूढ़ी औरत नौकरानी के वेश में उसकी ओर दौड़ी। उसने उसे गले लगाया और रोते हुए उसके सिर और चेहरे को चूमा। तहमास्ब ने आश्चर्य से बूढ़ी औरत को देखा, लेकिन वो कुछ समझ नहीं सका कि उसने उसे गले क्यों लगाया और उसमें इतना साहस कहाँ से आया। लेकिन बूढ़ी नौकरानी ने उसका रास्ता रोक लिया और ये शब्द दोहराती रही, आह मेरे बच्चे, मेरे इकलौते बच्चे, मेरी प्यारी जान। तहमास्ब ने बूढ़ी औरत की नम आंखों में झांकने की कोशिश की। आखिरकार उसने उस बूढ़ी की आंखों में अपनी माँ की ममता को पहचान लिया। तहमास्ब की माँ ने, जो ईरान की रानी और शाह सुल्तान हुसैन की पत्नी थी, अफगानों के हमले में अपनी जान बचाने के लिए नौकरानी का वेश धारण कर लिया था। अफगानों ने पूरे सफवी राजवंश का नरसंहार कर दिया था, लेकिन उसे नौकरानी समझकर छोड़ दिया था। ईरान की रानी ने 8 साल तक उनकी सेवा की। इस दर्द और पीड़ा ने उसे इतना बूढ़ा बना दिया और तोड़ दिया था कि सिर्फ 8 वर्ष बाद उनका बेटा उन्हें पहचान नहीं सका था। तहमास्ब को आश्चर्य हुआ कि उसकी मां ने अंग्रेजी या डच व्यापारी घरानों में शरण क्यों नहीं ली, जिनकी उनके पिता ने बड़ी मदद की थी। शाह तहमास्ब का ध्यान आकर्षित करने के लिए अंग्रेजों ने इस्फहान पर कब्जे के दौरान वहां के लोगों को दी गई अपनी सहायता का उल्लेख किया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि ने अपने नोट में लिखा, मैंने महामहिम को बधाई दी और यहाँ उनके लोगों को दी गई सहायता की सराहना की और उन्हें आश्वासन दिया कि मैं उनके आदेशों का अच्छी तरह से पालन करूँगा। उन्हें अभी तक ये एहसास नहीं हुआ था कि असली शासक नादिर था और शाह तहमास्ब के पास जो अपने सुख के लिए गद्दी चाहता था कोई शक्ति नहीं थी। लेकिन नादिर लंबे समय तक इस्फहान में नहीं ठहर सकता था। उत्तर में महामारी ने रूसियों को घेर लिया था और एक के बाद एक उनके सैनिकों की बीमारी से मौत हो रही थी। रूस के शासक पीटर महान का निधन हो चुका था और उसके उत्तराधिकारी को उसकी तरह सीमाओं का विस्तार करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ऐसी स्थिति में रूस ने वादा किया था कि अगर ईरान उस्मानी शासन को अपनी सीमाओं से खदेड़ देगा तो वो भी उत्तर में कब्जा किए गए इलाकों को ईरान को वापस लौटा देगा। रूस की तरफ से आश्वस्त होने के बाद नादिर ने उस्मानियों से दो दो हाथ करने का बीड़ा उठाया। जब उसकी सेना कज़विन पहुंची तो उसने वहां के कुछ योद्धाओं को अपनी सेना में भर्ती करने का फैसला किया। दरअसल वो चाहता था कि जो लोग बंदूक चलाना जानते हैं उन्हें अपने साथ शामिल कर ले। इसके लिए उसने निशानेबाजी की एक प्रतिस्पर्धा आयोजित की। नादिर ने अपनी अंगूठी एक पेड़ की शाख से लटका दी और निशानेबाजों से कहा कि उस अंगूठी का निशाना लें। कई लोगों की गोलियां इधर उधर से निकल गईं, लेकिन एक व्यक्ति का निशाना बिल्कुल सटीक जाकर लगा। नादिर ने उससे कहा कि फिर से निशाना लगाओ। उस व्यक्ति ने फिर से निशाना लगाया और गोली अंगूठी पर जाकर लगी। नादिर ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि एक बार फिर निशाना लगाओ। कज़विनी व्यक्ति ने इस बार फिर लक्ष्य को सटीक रूप से भेद दिया। नादिर ने उसकी प्रशंसा करते हुए पूछा, जब अफगानों ने हमला किया तो तुम कहाँ थे? इस लाजवाब निशानेबाज ने तुरंत जवाब दिया, मैं तो था लेकिन नादिर कुली नहीं थे। ये जवाब सुनकर नादिर खामोश हो गए। निशानेबाज का तात्पर्य यह था कि अच्छे योद्धाओं को एक शक्तिशाली और बहादुर कमांडर की ज़रूरत होती है ताकि दुश्मन से मुकाबला किया जा सके। नादिर ने ऐसे ही योद्धाओं को इकट्ठा किया और युद्ध में उस्मानी शासन को पराजित करके ईरान के एक बड़े भाग को आज़ाद करा लिया। नादिर कुली अरस नदी के उत्तरी शहरों को आज़ाद कराने की योजना बना ही रहा था कि उसे ईरान के पूर्वी भाग पर अफगानों के हमले की सूचना मिली। उसके बाद उसने उस्मानियों के खिलाफ युद्ध को समाप्त किया और पूरब का रुख किया। तहमास्ब इस्फहान में अय्याशी में डूबा हुआ था। उसे नादिर की सफलताओं से ईर्ष्या होने लगी। उसने नादिर के स्थान पर खुद उस्मानियों का सामना करने का फैसला किया। 18,000 की फौज के साथ उसने ईरवान का रुख किया। उस्मानियों ने इस युद्ध में न सिर्फ तहमास्ब को पराजित किया बल्कि जितने इलाके नादिर ने आज़ाद करवाए थे उन पर भी फिर से कब्जा कर लिया। तहमास्ब भागकर इस्फहान पहुंचा और दुश्मन के चंगुल से बचकर निकल जाने पर बहुत खुश था। जो इलाके उसने युद्ध में हारे थे उनकी परवाह किए बिना वो फिर से अय्याशी में डूब गया। उधर नादिर ने अफगानों के हमले को परास्त कर दिया था, लेकिन इसी दौरान उसे तहमास्ब की हार की खबर मिली। वो तेजी से इस्फहान की तरफ बढ़ा और शहर के निकट एक बाग में पहुंचकर पड़ाव डाल दिया। उसने शाह और देश के गणमान्य लोगों को अपने सैनिकों की परेड देखने के लिए आमंत्रित किया। तहमास्ब ने इस बाग में भी ऐश परस्ती को नहीं छोड़ा और कुछ गाने और नाचने वालियों के साथ शराब नोशी करता रहा और नशे में धुत रहा। उसने इतनी ज़्यादा शराब पी ली थी कि गणमान्य लोगों और धर्म गुरुओं का भी कोई ख्याल नहीं किया और लगभग नंगा हो गया। नादिर ने देश के गणमान्य और विशिष्ट लोगों को तहमास्ब का ये बुरा हाल दिखाया। उसके बाद युद्ध में मिली हार और उन इलाकों के हाथ से निकलने की शिकायत की जिन्हें उसने आज़ाद करा लिया था। इस तरह से नादिर ने बुजुर्ग हस्तियों को शाह तहमास्ब को गद्दी से हटाने के लिए प्रोत्साहित किया। वे लोग भी तहमास्ब की कारस्तानियों से आजिज आ चुके थे और नादिर की ताकत से भी डरते थे, इसलिए उन्होंने तहमास्ब को हटाए जाने के विचार का स्वागत किया, जिसके बाद तहमास्ब के 8 महीने के बेटे को उसका उत्तराधिकारी बना दिया गया। नए राजा के राज्याभिषेक समारोह की शुरुआत महल के हॉल के ऊपर 8 महीने के शिशु के पालने को रखने के साथ हुई। नादिर पालने के पास गया और उसने बच्चे के सिर के ऊपर पालने में शाही मुकुट रख दिया। फिर उसने पालने के पास एक तलवार और ढाल रख दी। उसके बाद देश के नेता और सेना के कमांडर पालने के पास गए और नवजात शिशु के प्रति अपना सम्मान प्रकट किया। उसी समारोह में नादिर को राजा का उत्तराधिकारी चुना गया, क्योंकि 8 महीने का बच्चा देश नहीं चला सकता था। जब असली सत्ता अशरफ कबीले के सरदार नादिर कुली बेग के हाथों में थी तो हालात बदल गए। तहमास्ब को सत्ता से हटाने के बाद नादिर ने फिर से उस्मानी साम्राज्य से लड़ने की तैयारी की। इस बार उसने न केवल ईरान की भूमि को आज़ाद कराया बल्कि उसने उस्मानी क्षेत्र में प्रवेश किया, वर्तमान इराक के करबला और नजफ शहरों की घेराबंदी कर ली, सुलेमानिया, मूसिल, हिल्ला और किरकुक पर भी कब्जा कर लिया और बगदाद की घेराबंदी कर ली। बगदाद पर हमला करने के साथ ही नादिर कुली ने अपने एक जनरल लतीफ़ खान को दक्षिण इराक से बसरा बंदरगाह पर हमला करने का आदेश दिया। लतीफ़ खान को बसरा पर ज़मीन और समुद्र से हमला करना था। समुद्र से हमला करने के लिए उसे जहाज़ों की ज़रूरत थी, जबकि ईरान के पास नौसेना नहीं थी। फ़ारस की खाड़ी में बड़े जहाज़ केवल ब्रिटिश और डच कंपनियों के पास ही उपलब्ध थे और वे अपने जहाज़ ईरानियों को सौंपने के लिए तैयार न थे। अगर ईरान के पास नौसेना होती तो वो फ़ारस की खाड़ी से होने वाले व्यापार पर नियंत्रण कर सकता था। अंततः लतीफ़ खान 2 अंग्रेज़ कप्तानों से 2 जहाज़ खरीदने में सफल रहा, जो ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित नहीं थे। जब भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रमुख को इस घटना का पता चला तो उसने ईरान की ओर जाने वाले ब्रिटिश जहाज़ों को सिर्फ इस शर्त पर आवाजाही की अनुमति दी कि कप्तान लिखित रूप में ये वचन दें कि अपने जहाज़ ईरान को नहीं बेचेंगे। लतीफ़ खान ने अपने सैनिकों को एक जहाज़ पर सवार किया और बसरा बंदरगाह की ओर चल पड़ा, लेकिन तट पर पहुँचने से पहले ही वो ये एक दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के 2 अंग्रेजी जहाज उस्मानी सैनिकों को लेकर उनकी ओर बढ़ रहे थे। ब्रिटिश जहाज़ों के साथ युद्ध लतीफ़ खान की थल सेना के बसरा पहुंचने से पहले ही शुरू हुआ और लतीफ़ खान की हार के साथ समाप्त हुआ। अंग्रेज नादिर कुली बेग के क्रोध से बहुत भयभीत थे। उन्होंने बंदर अब्बास में अपना कार्यालय बंद करने का निर्णय लिया और किरमान में अपने प्रतिनिधि को आदेश दिया कि वो जल्द से जल्द बंदर अब्बास चला जाए। अंग्रेज काफ़ी समय तक इंतज़ार करते रहे कि कब नादिर उनसे इंतकाम लेगा, लेकिन आखिरकार उन्हें एहसास हुआ कि नादिर का उनसे दुश्मनी करने का इरादा नहीं है। उसे नौसेना के गठन के साथ साथ बहरीन और ओमान पर हमला करने के लिए भी उनकी ज़रूरत थी। वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ अपने संबंध खराब नहीं करना चाहता था। ब्रिटिश और डच दोनों ही नादिर बेग को नाराज न करने और उसे एक मजबूत नौसेना हासिल करने से रोकने के प्रति सजग थे। बाद के युद्धों में दोनों कंपनियों ने अपने जहाज़ों को बेचने के बजाय उन्हें पट्टे पर देने पर सहमति व्यक्त की। इस तरह ईरानियों के मन से स्वतंत्र बेड़े का विचार ही मिट गया। आखिरकार ईरानी सेना की जीत के साथ उस्मानियों के साथ युद्ध समाप्त हुआ और नादिर कुली को वो स्थान प्राप्त हुआ जिसका उसे इंतज़ार था। 1148 हिजरी के रमज़ान महीने में उसने बुज़ुर्ग हस्तियों, स्थानीय शासकों, कबीलों के सरदारों और धर्मगुरुओं को उत्तरी अज़रबैजान के एक मैदान में इकट्ठा होने का आदेश दिया। नादिर ने इन लोगों को संबोधित करना शुरू किया और कहा, मैंने कई वर्षों तक ईरान के लिए लड़ाई लड़ी और दुश्मनों को ईरान की सीमाओं से बाहर खदेड़ दिया। अब मैं सेनापति का पद छोड़कर एक कोने में ईश्वर की इबादत और प्रार्थना और खुद को उसके लिए समर्पित करने का इरादा रखता हूँ। आप लोग तहमास्ब को या हर उस व्यक्ति को जिसे आप मुझसे अधिक योग्य समझते हैं सिंहासन पर बिठाएं। इस सभा में उपस्थित लोग जानते थे कि नादिर उनसे क्या अपेक्षा रखता है। उन्होंने एक स्वर में कहा, नादिर के अलावा हमारे लिए कोई राजा नहीं है। लेकिन नादिर ने ताज स्वीकार नहीं किया और इस बात पर जोर दिया कि स्वर्ग तक पहुंचने के लिए उसे अपना बाकी जीवन इबादत में गुजारना होगा। ये सभा 4 दिनों तक जारी रही और हर बार जब नादिर अपने मेहमानों से किसी को राजा चुनने के लिए कहता तो वे उसका नाम लेते और नादिर ये कहकर मना कर देता कि उसे अपना बाकी समय इबादत में बिताना है। अंत में नादिर के सेनापतियों में से एक ने लोगों को सूचित किया कि नादिर बेग उनके आग्रह के कारण सिंहासन स्वीकार करने के लिए सहमत हो गया है। सन 1735 में नादिर कुली के सिर पर ताज रखा गया और वो नादिर कुली से नादिर शाह बन गया। दोस्तों, जो पॉडकास्ट आपने सुना वो ईरान रेडियो द्वारा तैयार किया गया था। अगर आप दूसरे दिलचस्प विषयों पर भी पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट iranradio.ir/hi पर विजिट कर सकते हैं।